ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कंचित ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 14वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना श्लोक क्रमांक 41। कच्चित्वं ब्राह्मणं बालं गावृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षिः शरणप्रदः। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? तात्पर्य, ब्राह्मण लोग समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं। अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। इसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की आवश्यकता रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राज्य की ओर से संरक्षण नहीं मिलता तो यह क्षत्रिय या राज्य के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के साथ सचमुच ही ऐसी घटनाएं घटी थीं, तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने के इच्छुक हैं। अनुवाद, तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों बालकों गायों स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके। शब्द का को छोड़ दिया गया है, अनुवाद में गलती है, प्रिंटिंग करते समय तो पीपीटी में चिट्ठी लिखने के लिए याद रहना, वृद्ध छूट गया यहाँ पर अनुवाद करते समय। हरे कृष्णा। कच्चित्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धे वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षिः शरणप्रदः। अर्जुन 7 महीनों के बाद में द्वारका से हस्तिनापुर लौट रहे थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मिलने गए थे। युद्ध के बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर में काफी समय तक रहे थे, बल्कि जब पांडव अपने वनवास के आखिरी वर्ष में थे और जब वनवास समाप्त होने को आ रहा था, उस समय पांडवों ने एक सभा बुलाई थी मत्स्य देश में, जिनके राजा विराट थे। और सभा बुलाने का उद्देश्य ये था कि पांडव ये देखना चाहते थे कि युद्ध में उनकी ओर से कौन कौन लड़ने वाले हैं। और इससे पहले भी पांडवों का यह प्रयास था कि पहले हमें हमारे शुभ चिंतकों के साथ में बैठकर यह फैसला करना होगा कि आगे क्या किया जाए। कौरवों के साथ में युद्ध किया जाए, शांति का प्रस्ताव रखा जाए, किसी दूत को भेजकर उनके मन को बदलने का प्रयास किया जाए, क्या किया जाए। तो इसलिए पृथ्वी के कोने कोने से उनके शुभचिंतक आए थे। उधर हस्तिनापुर में कौरवों ने भी
अपनी तैयारियां आरंभ की थी। तो महाराज विराट के राजसभा में यदुकुल के सारे प्रमुख योद्धा वहां उपस्थित थे, उनमें से श्री कृष्ण और श्री बलराम भी थे। तो उस समय से बलराम श्री कृष्ण ने द्वारका से जब से बाहर आए हुए थे और सारे युद्ध समाप्त होने तक और युद्ध के बाद भी 4-6 महीने श्री कृष्ण पांडवों के साथ में रहे। पांडवों ने जब युद्ध जीत लिया था तो महाराज युधिष्ठिर खुश नहीं हुए थे, बड़े दुखी थे, अत्यंत दुखी थे, क्योंकि वो ये शोक कर रहे थे कि केवल मेरे राजगद्दी पर बैठने के लिए इतने करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या हुई है केवल इस एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि मुझे राजगद्दी पर बैठना था तो मैं ये कैसे भूल सकता हूं, और ये सारे जो लोग हैं ये सारे मेरे कुटुंब के निवासी, मेरे परिवार के लोग हैं। तो महाराज युधिष्ठिर और पांडवों को थोड़ी सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण वहां हस्तिनापुर में काफी समय रहे। फिर कृष्ण भगवान ने सोचा कि द्वारका के जो मेरे भक्त हैं कितने समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मुझे वापस जाना होगा। तो पांडवों को हस्तिनापुर में बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करते, श्री कृष्ण को उन्होंने अनुमति दे दी, श्री कृष्ण लौटकर चले गए। और इधर जिस प्रकार से द्वारका के निवासी श्री कृष्ण के विरह में दुखी थे, जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका लौटे तो इधर अर्जुन और पांडव विरह में पड़ गए। आखिर अर्जुन, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सबके निकट सबसे शुद्ध भक्त है, उनके मित्र थे, तो उनको और सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा मुझे तो श्री कृष्ण का संग तो प्राप्त करना ही होगा, मैं कृष्ण के बिना अब रह नहीं सकता। तो महाराज युधिष्ठिर की अनुमति ली और द्वारका चले गए। इसके पहले जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे, महाराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ कराने में उन्होंने मदद की। आपको याद होगा कि युद्ध के बहुत पहले महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से, कृपा से राजसूय यज्ञ संपन्न किया था, लेकिन इस वक्त युद्ध के बाद में अश्वमेध यज्ञ करना था, इसलिए श्री कृष्ण वहां रहे थे, उनके आदेशानुसार उनकी कृपा से अश्वमेध यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किए। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण लौट कर गए थे और अर्जुन उनके पास आए, तो अर्जुन को ये अच्छा नहीं लगा कि श्री कृष्ण का संग फिर से छोड़ के जाना चाहिए, तो वो भी कई महीनों तक श्री कृष्ण के साथ में रहे। उधर महाराज युधिष्ठिर राह देख रहे थे, कब आएंगे, कब आएगा अर्जुन, कब आएगा, कब आएगा। और एक दिन, बल्कि कई दिनों से जब युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे कि बहुत अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं सारे वातावरण में, तो वो बहुत ही चिंतित हो गए। अलग अलग प्रकार के अशुभ लक्षण, जैसे कि आकाश में, भूमि पर और मनुष्यों के शरीर में, ये एक विद्या है जिसको आजकल आधुनिक काल के लोग जानते नहीं है। किस प्रकार से बाहर लक्षणों को देखकर हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे क्या होगा या कहीं और इस समय क्या हो रहा है। मुझे याद है कि जब गुजरात में भूकंप हुआ था 1 साल पर या 6-8 महीने पहले, तो उस समय अखबार में हमने एक कथा पढ़ी थी कि एक स्त्री जो कि एक अट्टालिका में रहती थी ऊपर, और उनके 2 पालतू कुत्ते थे, तो भूकंप के करीब करीब 20-15 मिनट पहले ये दो कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। ये महिला को पता नहीं चला कि ये क्यों भौंक रहे हैं, और वो अपने दांतों से उस महिला के कपड़े को खींच खींच कर उसे दरवाजे के बाहर ले आना चाहते थे। ये महिला समझी नहीं कि ये कुत्ते ऐसे क्यों कर रहे हैं, कभी ऐसे उन्होंने बर्ताव नहीं किया था। खैर, खींच खींच कर लेने लगे दरवाजे की ओर, तो वो महिला सोच लगी ठीक है कहां ले जा रहे हैं, देखें तो सही। तो खींच खींच कर उसे वो महिला को वो कुत्ते नीचे ले गए, खाली जमीन पर ले गए, एक मैदान में ले गए, और बस दो मिनट बाद में वो सारे अट्टालिका जो है वो गिर पड़े। अगर वो वहां पर उस अट्टालिका में होती, उस मकान में होती, तो निश्चित रूप से वो भी मर जाती। इनको कोई संशय नहीं हुआ महिला को कि क्या होने वाला है, भूकंप होने वाला है, लेकिन ये कुत्तों को पता चल गया। कुत्तों की इंद्रियां भले हमारे जैसे ना हो, लेकिन कई क्षेत्रों में वो हमसे ज्यादा जान सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई लक्षण होते हैं जो वो पहचान सकते हैं। भगवान ने या प्रकृति के माध्यम से उनको वो कला या वो विज्ञान कहिए, विद्या कहिए, वो दे दी है। तो इसी प्रकार से ऐसी विद्या है, आजकल हम भूल गए हैं, नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये विद्या है ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत में कई बार हम ये उदाहरण देखते हैं, तीन जगह लक्षण प्रतीत होते हैं, एक आकाश में, दूसरे धरती पर, और तीसरे लोगों के शरीर में। लोगों के शरीर में क्या होता है कि पुरुषों के शरीर में बाई ओर जो जंघाएं होती हैं, जो भुजाएं होती हैं और आंखें होती हैं, वो कांपने लगती हैं। जब पुरुषों के बाएं ओर की ये चीजें कांपने लगती हैं और स्त्रियों के दाहिने ओर की चीजें कांपने लगती हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई अशुभ चीज होने वाली है। और अगर पुरुषों के कोई दाहिने भाग की जंघाएं या भुजाएं या आंखें कांप रही हैं और स्त्रियों के बाएं ओर के, तो समझ सकते हैं कि कोई अच्छी चीज होने वाली है। परंतु भक्त के लिए अच्छा बुरा सब एक समान है। कृष्ण की सेवा में क्या अच्छा और क्या बुरा, कृष्ण भक्ति में केवल एक ही चीज बुरी है, और वो है कृष्ण की विस्मृति और कृष्ण के भक्तों का अपराध। बस यही दो चीजें हैं जिससे हमें बच के रहना है, अन्यथा और कोई हमारे लिए शुभ अशुभ चीज नहीं है। लेकिन खैर, साधारण भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये चीजें हैं। और भूमि में कौन सी अशुभ चीजें होती हैं, जैसे भूकंप, भूमि कांपने लगती है और फिर तेज हवा बहने लगती है, और हवा की आवाज ऐसे होती है मानो कि हवा चीख रहे हैं। और जो नीच प्राणी होते हैं जैसे गधे और शेर इत्यादि, गीदड़ इत्यादि, ये बहुत चीखने लगते हैं, और कुत्ते आकर निर्भय होकर लोगों के सामने आकर भौंकने लगते हैं, और गाय वगैरह जो हमारे बायों से जाते हैं, ये सारे लक्षण युधिष्ठिर महाराज ने देखे हैं। इसका वर्णन इस अध्याय में है, इसके पहले सुखदेव गोस्वामी कर चुके हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज ने ये सारे लक्षण देखे। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि आकाश में सितारे सब गिर रहे हैं, आकाश में एक प्रकार का अजीब अंधकार छा गया था। तो ये सारे लक्षण देखने के बाद युधिष्ठिर महाराज के मन में चिंता हुई कि क्या बात है, क्यों नहीं आया अर्जुन, निश्चित रूप से कोई न कोई तकलीफ हो रही है या होने वाली है। क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसे हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ही द्वारका से अभी अपने धाम लौट कर चले गए। अंततः संशय उनको यही हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे जब युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से अपने चिंता को व्यक्त कर रहे थे, ठीक उसी समय अर्जुन लौट कर आए। अर्जुन का चेहरा गिरा हुआ था, चेहरे का तेज सब जा चुका था, अर्जुन का सर झुका हुआ था, आंखों में आंसू थे और ऐसे कंधे झुके हुए थे, और ऐसे लग रहा था कि अर्जुन तो बहुत ही निराश और दुखी अवस्था में है। महाराज युधिष्ठिर ने एक नजर से पता चला कि अर्जुन की हालत अच्छी नहीं है, तो अर्जुन से नाना प्रकार के प्रश्न करने लगे ये जानने के लिए कि इनकी जो ये हालत है इसके लिए क्या कारण है। और उनमें से ये एक प्रश्न उन्होंने किया, तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा वृद्धों ब्राह्मणों बालकों गायों स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो, क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? इस संसार में हर एक व्यक्ति शरण के पात्र है, हर एक व्यक्ति को शरण की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले अपने बल पर नहीं रह सकता, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी न किसी के शरण में रहे और अंततः सारे लोग भगवान के शरण में रहे। लेकिन भगवान के शरण में रहते हुए भी मनुष्य समाज में भी ये चाहिए कि हम एक दूसरे के शरण में रहें। तो वैदिक सभ्यता इतनी परिपूर्ण है कि यहां शरणागति की जो पद्धति बनाई है भगवान ने, सिस्टम बनाया है, वो बहुत ही बढ़िया है। भगवान ने इस मनुष्य समाज को चार भागों में विभाजित किया है, उसको चार वर्ण कहते हैं और चार आश्रम भी हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चौथे अध्याय में बताते हैं कि ये चार वर्णों का सृजन मैंने ही किया है, ये मेरी सृष्टि है हे अर्जुन। इसलिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार विभाजन भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि लोगों की अलग अलग प्रवृत्तियां रहती हैं। ब्राह्मण कौन होते हैं? जिनके अमुक प्रकार के गुण होते हैं, शमो दमो तपशौचम क्षांति आर्जव एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिनके ये सारे गुण होते हैं कि जो तपस्वी होते हैं, शुद्ध होते हैं, जो धर्म परायण होते हैं, तपस्वी होते हैं, सहनशील होते हैं इत्यादि, उनको ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रियों के गुण होते हैं, ईश्वर भाव में होता है, शूरवीर होते हैं और दया भावना दिखाते हैं जो उनके शरण में आते हैं। वैश्यों का कर्म होता है कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि गोरक्ष और वाणिज्य ये वैश्यों का काम है। और शूद्र ये क्या करते हैं? ये सभी की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने वर्णाश्रम की पद्धति बनाई है और हर एक वर्ण की उन्होंने कर्तव्य इत्यादि बतलाए हुए हैं। तो जहां तक संरक्षण का सवाल आता है, भगवान ने ये पद्धति बनाई है कि ब्राह्मण वो सारे समाज को मार्गदर्शन करें शास्त्रों के अनुसार। वो शास्त्रज्ञ रहेंगे, अपना ज्यादा समय शास्त्रों को पढ़ने में और पढ़ाने में वो व्यतीत करेंगे, जहां जैसे कि यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। ब्राह्मण लोग समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं, अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। ब्राह्मण के छह प्रकार के कार्य होते हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन पाठन मतलब वो शास्त्रों का पाठ करते हैं और दूसरों से पाठ कराते हैं, उनको सिखाते हैं। यजन याजन खुद भगवान श्री हरि के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं और दूसरों को यज्ञ कराना सिखाते हैं। तीसरी बात दान प्रतिग्रह, दान देते हैं और दान स्वीकार करते हैं। तो ब्राह्मणों को कोई समय नहीं रहता कि वो अपनी आमदनी के लिए कोई नौकरी करें व्यवसाय करें, इसलिए राजा का कर्तव्य होता है कि वो उनको संरक्षण दे। क्योंकि ब्राह्मण जो वास्तव में ब्राह्मण है, आजकल के ब्राह्मण नहीं, जो वास्तव में ब्राह्मण है उनका कर्तव्य होता है कि समाज में वो दिव्य ज्ञान विद्या प्रदान करें। ये सबसे मूल्यवान चीज है सारे समाज में, दिव्य ज्ञान। और जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान देता है समाज को, उसकी इज्जत की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, क्योंकि वो सबसे मूल्यवान वस्तु समाज को दे रहा है। और इसके बदले में राजा या राज्य को चाहिए या सरकार को चाहिए कि वो ब्राह्मणों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे, ताकि उनको व्यवसाय के लिए, अपनी आमदनी के लिए कष्ट करना न पड़े, उनका देखभाल करे, और अगर उनको कष्ट हो तो उनका संरक्षण करे। ये राज्य का कर्तव्य होता है। लेकिन आजकल ऐसे नहीं किया जाता, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म तो आजकल लुप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से क्षत्रियों को चाहिए कि वो ब्राह्मणों को रक्षा दे। हम देखते हैं कि जब राजा विश्वामित्र, राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र मुनि आए थे, वो एक प्रस्ताव लेकर आए थे, दान मांगने के लिए आए थे। हर क्षत्रिय को चाहिए कि उसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, जैसे ब्राह्मण मांगे वैसे देना चाहिए। जब विश्वामित्र मुनि वहां पर आए तो दशरथ महाराज बड़े खुश हुए, उनका अच्छे ढंग से स्वागत किया, सत्कार किया, और फिर कहने लगे कि हे मुनिवर, जो आपकी इच्छा हो मैं वो पूरी कर दूंगा। जिस प्रकार से आपकी सेवा करना उचित है, केवल आप आदेश दीजिए, मैं पूरा कर दूंगा। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ऐसा है कि मैं जहां तपस्या कर रहा हूं, मेरे आश्रम में प्रयाग के पास में, वहां पर राक्षस आ रहे हैं जिनका नाम है मारीच और सुबाहु, और ये तो राक्षस हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। जब भी हम यज्ञ करते हैं तो ये आकर वह नाना प्रकार के गंदी चीजें वहां डालते हैं और यज्ञ स्थली को और हम सबको प्रदूषित कर देते हैं, और ऐसे हम कोई भी यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। और ये मारीच और सुबाहु रावण के अनुयायी हैं। तो दशरथ महाराज कहने लगे कि ये कौन है ये रावण। तो उस समय विश्वामित्र ने रावण की का वर्णन किया और बताया कि रावण इतना शक्तिशाली राक्षस है, लंका में निवास करता है, और उससे सारे देवतागण भी कांपते हैं, इतना शक्तिशाली है ये रावण। और इसके ये दो खास मित्र हैं, मारीच और सुबाहु, और ये दो यहां पर आ रहे हैं। तो विश्वामित्र कहने लगे कि मुझे आपका पुत्र श्री राम चाहिए, मैं श्री राम को ले जाना चाहता हूं, ताकि वो आकर इन दो राक्षसों की कवध कर सके। जब दशरथ महाराज ने यह सुना तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनका प्राण ही खींच दिया हो, हृदय पर जबरदस्त धक्का पहुंच गया, और कहने लगे विश्वामित्र मुनि से कि मुनिवर, मेरे जो बच्चे हैं और खास करके श्री राम, वो तो बहुत कोमल है, नाजुक है, अभी केवल 16 वर्ष के हैं, अभी तक पूरी तरह से पुरुष भी नहीं हुए, अभी तक बच्चे हैं, और इतने धनुर्विद्या में इतने प्रवीण भी नहीं है, दक्ष नहीं है, तो इनको ले जाकर आप क्या करोगे। और वैसे मैं खुद आऊंगा, इतने बड़े बड़े राक्षसों का सामना करना रावण जैसे, ये तो कोई मनुष्य के लिए संभव नहीं है, परंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी रक्षा करूं। मैं मेरी सेना को भेजूंगा और सेना के साथ में मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं युद्ध करके उन राक्षसों का वध कर दूंगा। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, नहीं, आप वचन दे चुके हैं कि आप मेरी कोई भी इच्छा हो उसको पालन करेंगे, तो मुझे श्री राम ही चाहिए और उसके साथ में लक्ष्मण। राजा दशरथ बहुत तरह से समझाने का प्रयत्न कर रहे थे विश्वामित्र मुनि को, और अंततः जब विश्वामित्र मुनि ने नहीं माना तो दशरथ महाराज ने साफ इनकार कर दिया, कह दिया कि नहीं, हम नहीं दे सकेंगे श्री राम को। उस समय वशिष्ठ मुनि आए, विश्वामित्र मुनि भी बड़े क्रोधित हो गए थे। तब तक वशिष्ठ मुनि जो कि कुलगुरु थे महाराज दशरथ के कई पीढ़ियों से, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राजन, देखिए आप अधर्म को स्वीकार मत कीजिए, आप पहले से एक ब्राह्मण को वचन दे चुके हैं कि आप उनका संरक्षण करेंगे, और जब आपने वचन दे दिया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको पूरा पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आप अगर ऐसा पाप करेंगे तो आपको नरक गति मिलेगी। इसलिए श्री राम को विश्वामित्र मुनि के हवाले कर दीजिए। और जहां तक आपकी चिंता है कि श्री राम को कोई खतरा है, मैं आपको समझा दूं कि श्री राम की शक्ति को आप भी नहीं जानते अच्छी तरह से, क्योंकि आप पिता हैं, वात्सल्य प्रेम की वजह से आप श्री राम को पहचानते नहीं हैं, उनकी शक्ति को जानते नहीं हैं। वो हर चीज करने में पूर्ण समर्थ है, कोई चिंता की बात नहीं है। और तीसरी बात है राजन, आप विश्वामित्र मुनि को भी नहीं जानते। विश्वामित्र मुनि अपने आप में पूरी तरह से समर्थ है इन दो राक्षसों का वध करने के लिए। वास्तव में विश्वामित्र मुनि बड़े शक्तिशाली थे, केवल अपने तपस्या के बल पर वो हजारों लाखों राक्षसों का वध करने में समर्थ थे। और वशिष्ठ मुनि कहने लगे, इनकी तपस्या के बल से वो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र उत्पन्न कर सकते हैं केवल योग बल पर, जो कि इन राक्षसों को आसानी से वध कर पाएगा। इसलिए अब ये मत सोचिए कि विश्वामित्र मुनि कमजोर है, वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी हत्या करना ये ब्राह्मण का काम नहीं है। ब्राह्मण का काम है तपस्या करना, यज्ञ करना, पाठ करना, सिखाना। और आप क्षत्रिय हैं, आपका कर्तव्य है, राम का कर्तव्य है कि ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा करना। तो ये मत सोचिए कि विश्वामित्र मुनि इसलिए श्री राम के पास आए हैं कि वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, लेकिन वो श्री राम का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, वो नाम श्री राम को सारे विश्व भर में प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं। इसलिए वो श्री राम को ले जाना चाहते हैं और श्री राम को कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस प्रकार से फिर दशरथ महाराज तैयार हुए और श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ में गए। आगे चल के श्री राम ने बारिज और सुबाहु की हत्या कर दी। सुबाहु को मार दिया, लेकिन बारिज को श्री राम ने इतने दूर एक तीर से भेज दिया कि सीधे प्रयाग से वो समुद्र में गया, समुद्र जाकर गिर पड़ा। अब सोचिए प्रयाग से समुद्र कितना दूर है, लेकिन भगवान श्री राम के एक तीर से वो सुबाहु इतने दूर उड़कर चला गया, लेकिन उसके प्राण नहीं चले गए। भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर उनको जीवित रखा। तो इससे हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण अपनी ब्रह्म तेज से, अपनी तपस्या के बल पर अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ होते हैं, परंतु जब अपनी रक्षा के लिए वो अपना बल का प्रयोग करते हैं तो उनकी तपस्या की पूंजी वो कम हो जाती है और उनको ऐसा करना उचित नहीं है। हर एक वर्ग में, हर समाज में हर एक वर्ग को अपना अपना काम करना चाहिए। क्षत्रियों का काम है अस्त्र शस्त्र उठाना, तो क्षत्रिय को ही करना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं। इस प्रकार से दशरथ महाराज ने श्री राम को विश्वामित्र मुनि के साथ में भेज कर तो बहुत महत्वपूर्ण उनका कर्तव्य पूर्ण किया कि वो ब्राह्मणों की रक्षा करें। ब्राह्मण वो इस समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। शास्त्र में बताया जाता है कि ये समाज हमारे शरीर की तरह है। शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, सर होता है, हाथ होते हैं, पेट होता है, पैर होता है, होते हैं। तो सर की तुलना ब्राह्मणों से की गई है। हमारे भुजाएं क्षत्रिय के समान है, हमारा पेट वैश्य के समान है और हमारे पैर शूद्र के समान है। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है शरीर का? सर। क्योंकि आदमी एक हाथ कट जाए, एक पैर कट जाए, तो ठीक है आदमी जीवित रह सकता है, पेट खराब हो जाए फिर भी रह सकता है, लेकिन दिमाग खराब हो जाए तो बहुत तकलीफ है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये सर या दिमाग ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। जब ये अचानक हम कहीं जाते हैं और कोई आवाज सुनते हैं, अब घात का कोई डर होता है, तो हमारे हाथ कहाँ जाते हैं? पहले सीधे अपने सर को सुरक्षित करने के लिए हमारे हाथ ऊपर जाते हैं, स्वाभाविक तौर से तुरंत हाथ वहां चले जाता है। इसका मतलब है कि समाज में सबसे पहले ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो समाज का सर नहीं होगा, समाज की बुद्धि नहीं होगी, फिर समाज अवश्य पागल बन जाएगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा, जैसे कि अब हो रहा है। तो इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा करना ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण जो समाज को दे रहे हैं वो इतना मूल्यवान है। और रक्षा कौन देंगे? क्षत्रिय, क्षत्रायते इति क्षत्रियः, जो कष्टों से मुक्त करते हैं लोगों को, जो संरक्षण देते हैं लोगों को, उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय का धर्म होता है ये जो अहिंसा की धारणा है या जो दर्शन है, इसको सही तरह से समझना चाहिए। अहिंसा ब्राह्मण के लिए हो सकता है लेकिन क्षत्रिय के लिए नहीं। क्षत्रिय को जब आवश्यक हो उसे युद्ध करना चाहिए, और अगर जब आवश्यक हो अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो उसके लिए वो हिंसा होगा, और जब जरूरत के हिसाब से अगर क्षत्रिय युद्ध करे तो वो युद्ध हिंसा नहीं है उसके लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में किसी के साथ में, और अचानक किसी चोर ने आपके साथी के ऊपर आक्रमण किया है, तो आप क्या चुप बैठेंगे? अहिंसा के दर्शन को स्वीकार करके, नहीं नहीं हमने तो अहिंसा सीखा है भगवत गीता में। भगवत गीता तो अहिंसा नहीं सिखाता है, भगवत गीता धर्म सिखाता है, और धर्म के अनुसार अर्जुन को युद्ध करना था तो अर्जुन ने किया कृष्ण के आदेश के अनुसार। इस प्रकार से क्षत्रिय को चाहिए कि वो जब जरूरत पड़े तो वो हिंसा करे, और जब देखे कि जिन लोगों को उनको उन्हें सुरक्षा देना चाहिए अगर वो लोग खतरे में पड़ जाए तो उनको तलवार उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। एक बार महाराज परीक्षित भ्रमण कर रहे थे अपने राज्य में घोड़े पर सवार होकर, अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत क्रूर व्यक्ति, काले रंग का, आंखें लाल लाल, तलवार हाथ में लिए एक बैल को और गाय को हैरान कर रहा है। ये बैल के तीन पैर कटे हुए थे, ये बैल एक ही पैर पे था, और गाय भी बड़ी चिंतित थी, और ये व्यक्ति तलवार उठाकर हमला करने ही जा रहा था कि उस समय महाराज परीक्षित वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, खबरदार, अपनी तलवार उठाई, और उस व्यक्ति की हत्या करने वाले थे। वो दूसरा व्यक्ति कौन था? वो मूर्तिमान कली था, कलियुग का मूर्तिमान स्वरूप। तो कली ने जब देखा कि महाराज परीक्षित जैसे शक्तिशाली राजा क्षत्रिय मुझ पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो उस समय कली ने महाराज परीक्षित का आश्रय लिया, और फिर महाराज परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्यों गाय और बैल की हत्या करते हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह सबसे बड़ा पाप है? और जब महाराज परीक्षित ने जान से मारने की धमकी दे दी कली को, तो कली ने क्षमा याचना की और महाराज परीक्षित ने कली को निर्वासित कर दिया अपने राज्य से, और कहा कि तुम यहां राज्य से चले जाओ। और उस समय कली ने कहा कि मैं कहां जाऊंगा, सब जगह तो आपका राज ही है, तो ऐसा कोई मुझे स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं, और जहां दूसरे मुझे कोई कष्ट न दे और मैं भी किसी को कष्ट न दे सकूं। तो उस समय महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, जहां ये चार नियमों का पालन नहीं होता है, जहां पर ये चार वर्जित कार्य किए जाते हैं वहां पर तुम्हें रहना होगा, जहां मांसाहार होता है, जहां अवैध स्त्री संग होता है, जहां जुआ होता है, और जहां मदिरा पान किया जाता है, उन स्थानों में तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन महाराज आपके राज्य में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ठीक है, फिर ऐसे जगह में जाना जहां सोना है स्वर्ण, क्योंकि जहां सोना है स्वर्ण है वहां ये चारों चीजें आ जाए। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने गाय और बैल की रक्षा की, गोवंश की रक्षा। गाय बैल भी रक्षा के पात्र हैं और महाराज परीक्षित क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने दिखाया कि किस तरह से गाय बैल की रक्षा भी करनी चाहिए। ऐसे कितने ही सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। महाराज दिलीप की कथा आती है महाभारत में। महाराज दिलीप ये बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे, लेकिन इतने धर्म परायण होने के बाद भी उनका कोई संतान नहीं था, इसलिए वो बड़े दुखी थे। तो एक बार वो जब ब्राह्मणों से सलाह ले रहे थे कि क्या किया जाए, तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम गौ माता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करोगे तो संतान की उत्पत्ति होगी, क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद अपार होता है। तो महाराज दिलीप वशिष्ठ मुनि के पास में गए। वशिष्ठ मुनि एक सुरभि गाय थी जिसका नाम था नंदिनी, नंदिनी की सेवा करने लगे बड़े ध्यान से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से, और सुबह से शाम तक वो गाय की सेवा करते रहे। सुबह सुबह वो महाराज और अपनी रानी दोनों ही मिलकर जो साधारण से साधारण सेवा है वो गाय की करते, गोबर को निकालना, गाय का दोहन करना, गाय को नहलाना, और फिर राजा जंगल में गाय को चराने के लिए ले जाते थे नंदिनी गाय को। और एक बार ऐसे हुआ कि कई महीनों की सेवा करने के बाद में जब महाराज दिलीप उस गाय को ले गए जंगल में, तो अचानक एक शेर वहां पर आया, शेर नहीं सिंह, और वो सिंह अचानक कूद पड़ा उस गाय के ऊपर और गाय को अपने मुट्ठी में पकड़ रखा। और उस समय राजा परीक्षित ने, महाराज दिलीप ने अपनी तलवार उठाई, उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन देखा कि उनकी भुजाएं हिल नहीं रही हैं, शरीर हिल नहीं रहा है, जितना भी तलवार के पास जो हाथ है हाथ वहीं का वहीं रह गया, मानो कि पैरालिसिस हो गया। वैसे के वैसे खड़े थे एक चित्र के बराबर। तो बोलने लगे, वो सिंह बोलने लगा कि हे राजन, ये मेरा भक्ष्य है, मेरा भोजन है, तो क्यों मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहते हो? तो महाराज दिलीप ने कहा कि ये तो गाय है, गाय की रक्षा करनी चाहिए मुझे। तो सिंह कहने लगा, अरे क्या लाभ होगा पशुओं की रक्षा करने से, ये तो मेरा भोजन है, और वैसे भी पशु रक्षा करने के बजाय तुम भोग करो, तुम तो राजा हो, अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें सब कुछ मिलता है, तुम्हें संतान नहीं मिला है इसलिए तुम यहां आए हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अपने अपने कर्म के अनुसार सब होता है, और वैसे भी यह तुम मेरे हाथ से बचने, ये गाय मेरे हाथ से बचने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने निश्चित किया है कि ये गाय मेरा भोजन बनने वाली है। तो उस समय महाराज दिलीप ने कहा कि ठीक है, आप इस गाय को छोड़ो, अगर आपको भोजन ही चाहिए, और मुझे स्वीकार कर लो, मैं मेरा शरीर देने के लिए तैयार हूं। तो सिंह हंसने लगा, कहने लगा, अरे राजा आप तो बड़े मूर्ख हो, एक प्राणी को बचाने के लिए आप अपनी जान देना चाहते हो, आप तो आप देश के राजा हो, आपकी आवश्यकता है सारे प्रजा को, देश को, आप जैसा राजा अगर रहेगा गद्दी पर तो सारे समाज में शांति हो सकती है, लेकिन एक पशु की वजह से अगर आप अपनी जान की जान को खतरे में डाल रहे हैं तो फिर दूसरों के लिए ये अन्याय है, ये हिंसा है, तो एक को जाने दीजिए और बाकी अपने राज्य को बचा के रखिए। तो महाराज दिलीप ने कहा, क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपनी जान देकर भी एक भी प्रजा का कोई व्यक्ति उसे रक्षा करे, क्षत्रिय के होते हुए प्रजा के एक भी सदस्य को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यह होता है क्षत्रिय, इसलिए मैं अपने क्षत्रिय धर्म से अवश्य कभी भी हिल नहीं सकता। तो इस प्रकार से सिंह ने बहुत कहने के बाद भी महाराज दिलीप नहीं माने, और उस समय उस सिंह ने गाय को छोड़ दिया और महाराज दिलीप ने अपने आप को नीचे सिंह के सामने रख दिया और कुछ हुआ ही नहीं, सिंह ने आक्रमण किया नहीं। एक सेकंड बीत गया, दो सेकंड, चार सेकंड, दस सेकंड और थोड़ी देर बाद महाराज दिलीप ने सर ऊपर किया देखने के लिए कि क्या बात है, सिंह ने अभी तक मुझे खाया क्यों नहीं। तो क्या देखते हैं कि सिंह तो गायब और वहां केवल गाय खड़ी है। और फिर गाय बोलने लगी कि हे महाराज, ये मत सोचो कि मैं साधारण गाय हूं, मैं सुरभि गाय हूं और मेरी सुरक्षा मैं स्वतः कर सकती हूं, मैं पूरी तरह से समर्थ हूं, मैं साधारण गाय नहीं हूं। ये सिंह केवल मेरी माया शक्ति से मैंने प्रदर्शित किया है, प्रकट किया है केवल आपकी परीक्षा के लिए। अभी हम संतुष्ट हो गए हैं, इसलिए आपने जो उदाहरण दिखाया है सेवा के लिए, ये इतिहास में एक ऐसा उदाहरण रहेगा जो कि लाखों लाखों साल तक लोग इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे और गौरक्षक के रूप में आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज भी जब महाराज दिलीप का नाम लिया जाता है तो गौरक्षा ये शब्द हमेशा मन में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की रक्षा के अलावा गाय की रक्षा करना ये भी आवश्यक है। और महाराज दिलीप ने दिखाया कि एक भी गाय क्यों ना हो उसके लिए क्षत्रिय अपना जान देने के लिए तैयार था। महाराज शिवी का उदाहरण भी हम देखते हैं कि केवल गाय ही क्यों, साधारण कोई प्राणी हो, पशु हो, उसके लिए भी अपना जान देना क्षत्रिय के लिए अनिवार्य है। एक बार एक कबूतर भाग कर आई, उसके पीछे एक चील थी। चील, चील जानते हैं ना?
ससाना।
तो ससाना उसके पीछे आया और ये छोटू पक्षी जो थी उसने कहा, हे महाराज मुझे सुरक्षा दीजिए क्योंकि एक बड़े पक्षी मेरे पीछे आ रही है। तो उस समय महाराज ने कहा, ठीक है आ जाओ यहां, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उस समय वो ससाना जो बड़ा पक्षी है वो भी वहां आ गया और कहने लगा, राजन मेरा भक्ष मुझे दे दो। पर नहीं, ये मेरी प्रजा है, इसका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। तो ससाने ने कहा, मैं भी तो प्रजा हूं और मेरा संरक्षण करना भी आपका कर्तव्य है, और अगर मुझसे आप मेरा भोजन छीन लोगे तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, इसलिए मेरा भोजन मुझसे छीन कर तुम मुझे सुरक्षा कैसे दे रहे हो, उल्टा मेरे प्रति अन्याय कर रहे हो, इसलिए मेरा भोजन मुझे लौटा देना। राजा बड़े दुविधा में पड़ गए, क्या किया जाए, दोनों की सुरक्षा करनी है, वाकई दोनों प्रजा है। तो फिर राजा ने कहा, ठीक है मैंने इसे वचन दिया है कि इसकी सुरक्षा मैं करूंगा और मेरा कर्तव्य तुम्हारे प्रति भी बनता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा भोजन दूं, तो तुम मेरे शरीर से उतना मांस ले लो जितना कि इस पक्षी के वजन के बराबर है और तुम खा लो, तुम भी संतुष्ट और ये भी संतुष्ट। तो तराजू लाया गया, तराजू में एक और वो छोटे पक्षी को रखा गया और महाराज शिवी अपने मांस को, अपने शरीर से मांस को काटने लगे। और फिर जितना भी वो करें, वो पक्षी का जो भाग था वो नीचे ज्यादा वजनदार था, आखिर खुद महाराज शिवी को वहां बैठना पड़ा और तब बिल्कुल बराबर तराजू आ गया। और महाराज शिवी ने कहा, ठीक है अब खा लो। तो उस समय वो दोनों पक्षी जो हैं उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और फिर कहा कि हम तो देवता हैं और हम तो केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप परीक्षा में बिल्कुल डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो गए, आपको गोल्ड मेडल मिला है। तो इस प्रकार से महाराज शिवी ने भी दिखाया कि क्षत्रियो कैसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और प्रजा के और कैसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वो है वृद्ध और जो रोगी होते हैं उनकी भी रक्षा करना बड़ा आवश्यक होता है। जहां वृद्ध होते हैं उनको सम्मान देना चाहिए क्योंकि ये भी समाज के लिए बहुत आवश्यक है जो वृद्ध होते हैं अपने अनुभव का फायदा सारे समाज को दे सकते हैं। अर्जुन बताते हैं भगवद गीता में कि अगर सारे वृद्धों की हत्या हो गई, हमारे कुल के बुजुर्गों की हत्या हो गई, तो युवा पीढ़ी को धर्म के बारे में सिखाएगा कौन, उनका संरक्षण करेगा कौन? और अगर धर्म नहीं रहा तो स्त्री जाति प्रदूषित हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, तो इस प्रकार से सारा समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए वृद्धों को समाज में रहना बहुत आवश्यक है। अगर वो वृद्ध अपने बचपन से ही धर्म परायण नहीं हो तो वृद्ध अवस्था में आकर वो अच्छी तरह से धर्म की शिक्षा, उपदेश और आश्रय दूसरों को दे सकते हैं। युवा पीढ़ी उनसे सलाह ले सकती है उनके अनुभव के लिए। इस प्रकार से वृद्धों की रक्षा ये भी करना बहुत आवश्यक है। जो भी कमजोर है समाज में उनकी रक्षा करना जरूरी है। गाय पशु कमजोर है, ब्राह्मण अस्त्र नहीं उठाते इसलिए वो कमजोर है, जो वृद्ध होते हैं वो भी कमजोर होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो भी कमजोर होते हैं, तो उनको भी सुरक्षा देना ये भी अनिवार्य है। इनको हमेशा किसी न किसी के संरक्षण में रहना चाहिए। बचपन में अपने पिता के, यौवन में अपने पति के, और बुढ़ापे में अपने पुत्र के। इस प्रकार से अगर स्त्री संरक्षण में रहेंगे हर समय तो समाज में कोई भी उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में बहुत दुष्ट लोग रहते हैं जो ऐसे स्त्रियों का फायदा उठाना चाहते हैं, जो धोखा देते हैं ऐसे स्त्रियों को जिनकी कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए अगर स्त्री दूषित हो जाएंगे तो वर्ण संकर होंगे। वर्ण संकर जायते, संकर वर्ण का कुलपदानस कुलस्य च। अर्जुन बताते हैं कि स्त्री के प्रदूषण से सारा वर्ण संकर खत्म हो जाता है और नारकी अवस्था समाज में हो जाती है। संकरो नरक आयेगा कुलपठाना कुलस्य च। तो स्त्री का संरक्षण करना ये भी बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं अर्जुन से कि क्या है अर्जुन, क्षत्रिय होने के बाद भी तुमने किसी शरण देने के बजाय किसी को तुमने शरण नहीं दिया, क्या ऐसा हो सकता है? कोई ब्राह्मण, कोई वृद्ध, कोई बालक, कोई गाय, कोई स्त्री रोगी, ऐसे व्यक्ति को कहीं तुमने शरण, जो आए थे तुम्हारे शरण लेने के लिए उनको शरण नहीं दिया, ऐसा क्या हो सकता है? इसके बारे में और एक घटना याद आती है कि प्रभुपाद के शिष्य थे एक गृहस्थ, पति पत्नी और छोटा बच्चा। तो ऐसा हुआ कि बच्चा बहुत शरारत करता था, तो माँ ने उसको बहुत डांटा और पीटा भी। जब माँ ने बच्चे को पीटा तो पति ने पत्नी को बहुत डांटा कि तुम बच्चे को क्यों इतना डांटते हो, और पत्नी बच्चे को लेकर पति के साथ में प्रभुपाद जी के पास आए तो पत्नी ने कहा कि पति मुझे बहुत डांटते हैं, तो प्रभुपाद जी ने पति को बहुत डांटा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, स्त्री की संरक्षण करना चाहिए, स्त्री को ऐसे डांटा नहीं चाहिए। तो कहने लगे कि स्त्री, ये तो स्त्री है ठीक है, लेकिन इसने गलती की है। वैसे जिस प्रकार स्त्री को नहीं डांटना चाहिए, बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, उसने बच्चे को डांटा, बच्चे भी तो शरण के पात्र है, तो बच्चे को डांटना नहीं चाहिए था, तो उसने बच्चे को डांटा और मैंने स्त्री को डांटा, मेरे पत्नी को डांटा। तो वो कहने लगा कि प्रभुपाद जी आप कह रहे हैं कि, तो प्रभुपाद जी ने उस पत्नी से कहा आपको बच्चे को नहीं डांटना चाहिए। फिर वो शिष्य कहने लगे प्रभुपाद जी मैं भी तो ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मणों को भी नहीं डांटना चाहिए आपको। तो प्रभुपाद जी कहने लगे तुम तो ब्राह्मण हो सकते हो लेकिन मेरे शिष्य हो, गुरु का अधिकार होता है कि शिष्य को डांटे। इस प्रकार से चेन बनता गया। तो समाज में अगर हर एक व्यक्ति अपना अपना काम करेगा, संरक्षण देना और शरण में रहना, तो सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है। समाज में, संसार में हम किसी के भी शरण में हो या ना हो, लेकिन अंततः हम सब श्री कृष्ण के शरण में हैं। समाश प्रिय पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे। जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, मुरारी जिनके वजह से सारा जगत पावन हो जाता है, तो उस समय इस संसार को पार करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे गाय के बछड़े के तलवे में जितना पानी आ सकता है, सारे संसार जो भौसागर है उतना ही छोटा हो जाता है। इसलिए भगवान का शरण लेना सभी का कर्तव्य है, और यही गीता का अंतिम उपदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सारे धर्मों को त्याग दो हे अर्जुन, और केवल मेरे शरण में आओ। श्री कृष्ण की शरणागति ये भक्ति की बुनियाद है। शरणागति के आधार पर प्रेम भक्ति हो सकती है। शरणागति मतलब भगवान के आदेश का पालन करना, पूरी तरह से भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना। तो जब ऐसे हम श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि का आश्रय लेते हैं, तो फिर सारा समाज सुखमय और शांतिपूर्वक आगे चल सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? नहीं, मनुस्मृति में ऐसा नहीं है। एक संत ने ऐसे कहा है, लेकिन इसको हमें सही ढंग से समझना चाहिए, नहीं तो समाज में ऐसी धारणा बहुत उत्पात पैदा कर सकती है और इससे बहुत गलतियां भी हो सकती है। समझने का इसका अर्थ ये है कि स्त्री को भी हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, आश्रय में रहना चाहिए, ये कहने की बात है। अगर स्त्री संरक्षण में रहेंगी तो स्त्री की जो शक्ति है वो प्रकट हो सकती है, और इस प्रकार से स्त्री जब धर्म परायण रहेगी तो वो सारे कुटुंब की और समाज की शक्ति बढ़ा सकती है। मनु संहिता में, महाभारत में भीष्म देव भी बताते हैं कि जब जहां स्त्री का सम्मान किया जाता है, जहां स्त्री खुश होती है कुटुंब में, उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी आकर निवास करती हैं, और जहां पर स्त्री का अपमान होता है और जहां स्त्री दुखी होती है, तो वहां यज्ञ होते हुए भी देवी देवता कोई वहां आते नहीं है, लक्ष्मी देवी भी वहां उस स्थान को छोड़कर चली जाती है, और उस कुटुंब का भाग्य ऐसे चूर चूर हो जाता है मानो की जादू से। स्त्री को हमारे शास्त्रों में देवी का स्थान दिया गया है, इसलिए देवी की तरफ का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ संरक्षण भी होना चाहिए। अगर स्त्री जाति का अच्छी तरह से संरक्षण किया जाए और उनका सम्मान किया जाए, तो फिर सारे समाज जो है अच्छी तरह से आगे चल पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, हमारी संस्था में स्त्रियों को हम माताजी बुलाते हैं, बहन जी भी नहीं। उत्तर भारत में कभी कभी माताजी किसी को बुलाने से उनको बुरा लगता है। हमें याद है, हम दिल्ली में एक बार गए थे, बस में चढ़ रहे थे, और हमारे आगे जो भक्त थे उनके आगे एक महिला थी, होंगे 25-30 साल की उम्र होंगी उनकी, छोटे से बच्चे को लेकर जा रहे थे। तो बस चल रहा था, बस शुरू हो गया बस, और हम बाहर लटक रहे थे, तो हमारे सामने भक्त ने कहा, माताजी जरा अंदर चलिए। तो वो बहुत गुस्सा हो गई, पीछे घूमकर, क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी लगती हूँ? मतलब उससे अपमान हो गया कि क्या तुम समझती हो कि मैं इतनी बुरी लगती हूँ, मतलब उनका अपमान हो गया। तो बस समझा, नहीं नहीं अपमान की दृष्टि से हमने नहीं बोला, हम लोग शायद महिला को माताजी बुलाते हैं सम्मान की दृष्टि से। ठीक है ठीक है। उनको लगा कि वो लगती है कि इतनी उम्र से बढ़ गई है, इसलिए उनको उम्र बढ़ा दिया उनका, उनको अपमान लग गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि हम माता जी बुलाते हैं सम्मान के लिए, सम्मान देते हैं, क्योंकि माँ का स्वरूप सम्मान है, सम्मान देते हैं माँ को। इसी प्रकार से हर महिला को अपने पत्नी के अलावा और जो भी कोई है को माता जी बुलाना चाहिए। और कोई प्रश्न? पंचाशोर्धम वनम व्रजेत, ऐसा आदेश है, पचास की उम्र में वन में प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन आजकल वन रहे नहीं ना प्रस्थान करने के लिए, कहाँ जाएंगे। लेकिन कलयुग में वानप्रस्थ का मतलब है कि हम संसार से आसक्ति धीरे धीरे कम करें, व्यवसाय नौकरी इत्यादि से, हमारे कौटुंबिक मामलों से हमारी जो आसक्ति है वो कम करें, और ज्यादा समय भगवान की सेवा के लिए, प्रचार के लिए इत्यादि हम बिताएं। ये आधुनिक काल का वानप्रस्थ है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा ज्यादा से ज्यादा इसमें लग जाना, और समाज को मार्गदर्शन करना, तपस्या करना, ये आजकल के वानप्रस्थ का कर्तव्य होता है। तो चाहे कोई घर में हो या बाहर हो घर के, उन्हें चाहिए कि ऐसे अपने अनुभव का लाभ समाज में सभी को दें, और धर्म परायण होकर धर्म प्रचार करें, भक्ति के बारे में सबको श्री कृष्ण के शरण में लाने के लिए प्रेरित करें। यह होता है उनका अस्तित्व कार्य। ऐसा हुआ है? क्यों ऐसी अपेक्षा है कि होगा ऐसे? नहीं है
ना।
नहीं, हमने तो कहा ही था कि अगर आपके साथी के ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार करके आप चुप नहीं बैठ सकते। वैष्णव जो होता है वो न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है, न वैश्य है, न शूद्र है, वो कृष्ण का भक्त है, और कृष्ण और कृष्ण भक्त की सुरक्षा के लिए जो भी करना है उसे करना चाहिए, जो भी उचित है, जो भी आवश्यक है वो करना चाहिए। लेकिन हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए समाज में जिससे कि लोग आके हमें ऐसे आक्रमण करें, ये लोग इतने ऐसे है वैसे है, चलो इनकी पिटाई करो। हमेशा आदर्श उदाहरण समाज के सामने रखना चाहिए कि आदर्श मनुष्य कैसे होना चाहिए। हमारा व्यवहार समाज में कभी भी निंदनीय नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए समाज में कि कोई भी उंगली उठाकर कुछ कह नहीं पाए हमारे खिलाफ।
क्षत्रिय जो होते हैं विशिष्ट तापमान पर वो अपना निकल जाते, उनके लिए मास्क खाना आवश्यक होता है या दारू पीना आवश्यक होता है, उस परिस्थिति में उनको रहना पड़ता है, वो कैसे भक्ति करते हैं?
आवश्यक नहीं होता,
किसी सियाचिन में जाना पड़ता है, उनको शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तापमान बढ़ाने के लिए
और भी पद्धतियां हैं ना तापमान बढ़ाने के लिए, केवल दारू ही थोड़ी है।
दूसरी दूसरी जो पद्धतियां हैं सरल नहीं, क्योंकि वहाँ उष्णता जो है वो कैसे उत्पन्न नहीं होती,
जहाँ है चाह वहाँ है राह, थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करें सब हो सकता है। जितना कष्ट, जितना खर्च, इतना सब दारू उठा उठा कर उधर ले जाने में होता है, उतने कष्ट से बहुत कुछ अच्छा इंतजाम किया जा सकता है।
और जो वैश्य होता है वो अपने व्यवसाय में झूठ बोलता है, उसके बिना उसका व्यवसाय नहीं चलता, वो कैसा लगता है?
व्यवसाय में थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता ही है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे व्यापारी आपसे कहेगा इसका मूल्य वैसे तो इतना है लेकिन केवल आपके लिए मैं 50% कम करके दूंगा, मेरे लिए कोई मुनाफा नहीं लूंगा मैं। अगर वो नहीं लेता तो क्या टिक पाता, मुनाफा नहीं होता तो अवश्य ले रहा है मुनाफा। तो ऐसे व्यवसाय में थोड़ी एक दो बातें ठीक है बोलनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हर एक वर्ण में अपने अपने कार्यों में कोई ना कोई एक पाप रहता है और उसे उस झूठ का भी पाप सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्षत्रिय ने भी अगर कुछ किया, उनको शिकार करने की अनुमति दी जाती थी उस समय ताकि वो खून से डरे नहीं, ऐसा न हो कि जब वो आक्रमण करने जा रहे हैं किसी एक व्यक्ति की हत्या हुई, देखा खून हो गया, घबरा कर भाग गए, तो ऐसा कैसे क्षत्रिय हो सकता है। तो उसको उसके साहस को बढ़ाने के लिए, उसे निडर करने के लिए शिकार करने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन फिर भी ऐसे शिकार के जो कर्मों का फल है उसे मिलना चाहिए। उसी प्रकार से वैश्य है जो भी अपने व्यवसाय में वो कुछ थोड़ा बहुत झूठ बोलता है, बहुत नहीं थोड़ा होना चाहिए, जितना कम हो सके, तो उसे भी उसका दंड मिलेगा। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग के वश में आकर व्यापारी लोग जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा धोखा देते हैं, और भारत में तो बहुत बहुत ही चलता है, इसकी कोई सीमा नहीं। हमारा देश धोखेबाजियों का देश हो गया है, हर आदमी दूसरे को धोखा देता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बताते थे ये संसार में दो प्रकार के लोग हैं, जो धोखा देते हैं और जो धोखा खाते हैं। बस कोई ईमानदारी भी नहीं रही व्यवसाय में जैसे कि होनी चाहिए। इसे कितनी बार हमें सुनाई पड़ता है, कितने लोग आके बार बार बोलते हैं कि कहीं विदेश में किसी, कल थोड़े ही दिन पहले एक व्यक्ति बोल रहे थे यहाँ से गेहूं को बेचना था इराक में, अरब देश में, और उन्होंने कितने एक एक इसमें गेहूं था और आधा जो गोनी है उसका मिट्टी और आधा गोनी गेहूं भर के दिया यहाँ के लोगों ने, उनको देना चाहिए था पूरा गोनी भर के गेहूं, लेकिन आधा मिट्टी भर दिया और आधा गेहूं भर दिया। ऐसे कितने उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण हर देश में यहां से जो भी माल जाता है। इसलिए ये देश इतना बदनाम हो गया भारत व्यवसाय की दृष्टि में, कोई भरोसा नहीं करता। तो व्यवसाय में जरूरत से ज्यादा जो झूठ बोलता है उसे तो बहुत ही ज्यादा दंड मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अपने पेट के लिए जितना कुछ थोड़ा बहुत करना पड़े, छोटी मोटी चीजें, वो ठीक है उसके बिना नहीं चलता, लेकिन फिर भी उसका फल तो मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम श्री कृष्ण के शरण में जाएं। श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे अगर हमने सारे कर्मों के फल श्री कृष्ण को अर्पित किए, तो श्री कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच, कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ से हम पाप करें और फिर सोचें कि चलो श्री कृष्ण के शरण में गए हैं तब उनसे मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं।
जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी ये अपेक्षा है कि वो ऐसे रहे बिना शादी, अगर पत्नी का मृत्यु होता तो पति शादी करता हूँ तो कभी कभी के लिए नहीं होगा
वास्तव में। मनुसंहिता मनुस्मृति में ऐसे कई सारे अलग 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 आदेश हैं किस प्रकार से कलयुग में इनको बिठाया जा सकता है, ये और एक बात है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें आजकल की परिस्थिति के हिसाब से, जब पुराने जमाने में कोई युवती विधवा हो जाती थी तो पहले के जमाने में कोई सुरक्षा तो हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, या तो कोई भी इतने सारे परिवार के सदस्य होते थे कि स्त्री कभी अकेले नहीं रह जाती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, सब अलग 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 हो गए हैं, तो अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो स्त्री अकेले रह जाती है, तो शास्त्र में ये आदेश है कि विधवा को पुनः विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी आदेश है कि स्त्री को संरक्षण में रहना चाहिए। तो अगर एक ऐसी स्त्री हो इसका संरक्षण करने वाला कोई नहीं हो और वो विधवा हो गई हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो दोनों को नाप तोल देना चाहिए। और खास करके भक्ति मार्ग में अगर वो ऐसी परिस्थिति में है कि अगर अकेली रहेगी तो उसके भक्ति के लिए, उसके मन शरीर के लिए, उसके सब हर दृष्टि से उसके लिए अच्छा नहीं है।